लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति। श्री फोर्ट निवासी दिल्ली दरबार से पधारे हुए बाबा के सभी अनन्य रत्नों का इस तपस्वी भूमि में, वरदानी भूमि में स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज हम सभी के बीच में आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी दीदी जी का एक हाथ की ताली से, अव्यक्त ताली से हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। सरल स्वभाव का दूसरा नाम आदरणीय शीलू दीदी जी हैं। रूहानियत की चलती फिरती मूरत हमारी आदरणीय शीलू दीदी जी हैं। पिछले 48-50 साल से जिन्होंने अपना जीवन यज्ञ सेवा को अर्पित किया है, 1970 से आपकी समर्पित जीवन की यात्रा शुरू हुई और बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद, मुंबई आदि अनेक स्थानों पर दीदी ने अपनी सेवाओं का लाभ दिया। 74 से 76 तक कुछ अफ्रीकी देशों तथा मॉरिशियस में भी आदरणीय शीलू दीदी जी द्वारा बाबा ने सेवा कराई। 1976 से आप यहाँ मधुबन मुख्यालय के अंदर अपनी निस्वार्थ सेवाओं का लाभ आने वाले हजारों बीके भाई बहने और लाखों अनजान आत्माओं को शिविर के द्वारा, कोर्स के द्वारा दे रहे हैं। मुझे याद है यज्ञ में एक समय ऐसा था कि जब मात्र और मात्र शीलू दीदी ही सारी शिविरें कराते थे। आजकल तो काफी सारी बहने हैं, लेकिन तब शिविर की शुरुआत जो यहाँ पर हुई थी और जो भी वीआईपी आते थे आपका लाभ उनको मिलता था। आप सभी देखते होंगे जी जागरण है, संस्कार चैनल है आदि टीवीयों के अंदर आजकल चैनल्स में कई बहने भाइयों के इंटरव्यू, क्लासेस, प्रवचन आदि आ रहे हैं, लेकिन इस सेवा की शुरुआत भी जी टीवी से सबसे पहले आदरणीय शीलू दीदी के द्वारा हुई है। ऐसी विरल हस्ती आज हम सभी को क्लास कराएंगे। क्लास का विषय है वरदानी वेला, अमृत वेला। कल से ही करना है ना बाबा के घर में, तो आज फाउंडेशन पक्का कराएंगे। और दूसरा, आज से शुरू हो रही भट्टी का लक्ष्य एवं उद्देश्य भी दीदी जी स्पष्ट करेंगे, आदरणीय शीलू दीदी जी।
तृप्ति बहन हमारी सबको तृप्त करने वाली।
शरीर का नाम तृप्ति है। सूरत के वराछा सेवा केंद्र पर रहती हूँ। पिछले 38 वर्ष से ज्ञान में हूँ और 32 साल हुआ यज्ञ में समर्पित हुए। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति,
ओम शांति।
आप सभी बेहद बाप के घर में आए हो मौन तपस्या बट्ठी करने। जैसे ही आपको अकोमोडेशन मिली होगी, आपको यह बैज दिया होगा और आपने अपने गले में उसी वक्त लगाया होगा और इस पर पढ़ा होगा मौन तपस्या बट्ठी, तो मानो एक थप्पा लग गया आप पर कि अगले तीन दिन मौन में रहना है, तपस्या करनी है और बट्ठी में पकना है। ये तीन बातें आपको इस मौन तपस्या बट्ठी में करनी है। बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के भी आप आए होंगे कि मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, बाप दादा की कर्म भूमि में हम बट्ठी करने जा रहे हैं। यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हो सकता है कि कईयों की इच्छा होगी लेकिन उनका नंबर नहीं लगा और आपका लग गया। कईयों का नंबर लगा भी होगा लेकिन अंत घड़ी कोई ऐसी अड़चन उनके पास आ गई होगी, कोई बात आ गई होगी जो वो नहीं आ सके। और ऐसे भी होगा कि जिनका नाम था नहीं लेकिन ऐड कर दिया गया और पहुंच गए, तो जो पहुंच गए वो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। तो फिर से अपने लिए ताली बजाओ। तो इस मधुबन तपोभूमि में आप ऐसे समय पर आए हो जबकि उबलती हुई गर्मी मधुबन माउंट आबू में भी थी, दिल्ली में तो बहुत ही थी लेकिन यहाँ भी कम नहीं थी। उसको पार करके आप यहाँ पहुंचे हो और अभी मौसम एकदम बदल गया। चार दिन पहले क्या मौसम था और आज क्या मौसम है, बहुत अंतर पड़ गया है। तो सवेरे सवेरे तो ठंडी ठंडी हवाएं जो कल आई होंगी उन्होंने महसूस किया होगा ना, तो ऐसे लगा जैसे कहीं रेफ्रिजरेटर में तो नहीं पहुंच गए हैं बट्ठे में से निकल करके, ऐसा अनुभव हुआ। तो सुबह का समय बादल भी नीचे आ गए, फागी भी हो गई थोड़ी थोड़ी, और कईयों ने तो अपना अनुभव सुनाया जैसे सूक्ष्म वतन से पार हो रहे हैं, सूक्ष्म वतन से गुजर रहे हैं। तो ऐसे इस समय पर आपकी बट्ठी हो रही है। आपके पहले जो दो तीन बट्ठियां हुई उनको तो बहुत गर्मी लगी, यहां भी गर्मी लगी, नीचे तो थी गर्मी और गर्मी से तो आए ही थे, तो यहां भी कम नहीं थी गर्मी। पर आपके आने से दिन बदल गए, तो कितना भाग्यशाली है आप। तो भाग्य के भी अगर गुण गाएं तो बहुत बहुत आपका भाग्य है। और तपस्या करेंगे ये और बड़ा भाग्य। वहां तो आपको समय नहीं मिलता होगा, गृहस्थी का भी बोझ है, नौकरी धंधे का बोझ है, न जाने क्या क्या बोझ होते हैं, पर यहाँ आप सारे बोझ को छोड़कर आए हो ना या लेके आए हो। हाँ, छोड़ के आए हो ना कि थोड़ा थोड़ा लेके भी आए हो, कुछ कुछ हाँ कुछ भी नहीं लाए, बिल्कुल छोड़ के आए। सच्ची कुछ याद तो नहीं आएगा, नहीं याद आएगा सच्ची। चलो अच्छी बात है, क्योंकि तभी आप पूरा लाभ ले सकेंगे। आप यही महसूस करेंगे कि हम तो एक अलग सी दुनिया में आ गए हैं, अभी तक जितनी भी बठियां हुई सब ने यही अनुभव किया, तो आपका अनुभव तो इनसे भी बढ़कर होगा क्योंकि मौसम का भी साथ है। तो इसीलिए इस मौन तपस्या बठी में तो आप आए हैं, तो सबसे पहले जैसे आपने बैज पहना तो शब्द तो सुन लिया ना मौन, तो मौन में रह सकेंगे, रह सकेंगे जो समझते हैं हम रह सकेंगे, हाथ उठाए। अच्छा सारे ही आप कहेंगे इसीलिए तो आए हैं, हाँ? और जो कहते हैं कोशिश करेंगे वो हाथ उठाए, कोशिश कोई भी नहीं, सब ने वायदा किया है, अच्छी बात है। तो पर मुख का मौन केवल नहीं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मन का भी मौन हो, मन से भी हर बात से उपराम रहे तब सहज होगा। कई बार तो मुख का मौन भी मुश्किल होता है, मन का मौन तो पता नहीं कितना मुश्किल होगा, पर मुख का मौन भी मुश्किल होता है। इसीलिए बाबा कई बार पूछते हैं कि शांत रहना सहज है या आवाज में आना सहज है, आवाज में आना सहज है या आवाज से परे जाना सहज है। तो कोई कहे कि कोई क्या जवाब देगा कोई क्या, परंतु सचमुच देखा जाता है आवाज से परे रहना थोड़ा मुश्किल लगता है। होना चाहिए तो वो सहज ना, आवाज में आना ही नहीं बोलना ही नहीं है तो सहज होना चाहिए, लेकिन मौन में रहना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो अंदर में संकल्प है वो अच्छा बोल दे सुना दे, तो अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मुख का मौन चलो फिर भी सहज हो सकता है अगर लक्ष्य रखे तो, पर मन का मौन वो इतना ऊंचा है जो कोई भी सोच और चले ही नहीं, ये भी नहीं कि कुछ भी सोच न चले, क्योंकि बाबा की याद तो होगी, बाबा की मुरली सुनेंगे उसका तो मनन चिंतन चलेगा ही, साथ साथ जो क्लासेस भी सुनेंगे हमारे वरिष्ठ अनुभवी भाई बहनों द्वारा उसका भी मनन चिंतन चलेगा ही, तो वो तो चलेगा, जरूर चलना भी चाहिए। और भले बाबा कहते हैं कि बुद्धि रूपी किताब में भर जाए, परंतु अगर लिखते हैं तो फ्री टाइम में उसको पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि सारी बातें तो याद नहीं रहती, तो अपने को स्टूडेंट भी समझेंगे, तो स्टूडेंट माना फ्री टाइम में अपना स्वाध्याय करना, तो लिखेंगे तो उसको फिर पढ़ सकेंगे रिवाइज कर सकेंगे, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर तपस्वी तो है ही, लेकिन साथ साथ एक ऐसा स्टूडेंट बन करके रहना है जो स्टूडेंट को बुद्धि में पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं रहता, और योगी को योग के सिवाय और कुछ नहीं भासता। तो हम सभी योगी तो हैं ही, और बाबा कहते हैं दो चार घंटे के योगी नहीं है, कितने कौन से योगी हैं हम, हाँ? सदा के योगी है, वो तो दो चार घंटे के योगी होते हैं, दो चार घंटा चलो कोई हठ योग किया प्राणायाम किया या जो कुछ किया एक घंटा दो घंटा, पर यहाँ तो बाबा कहते हैं कि सदा का योग है, योगी जीवन है, दो चार घंटे के योगी नहीं है। और उस योगी जीवन में भी ये जो तीन दिन वो तो छाप लग जाए, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक योगी जीवन की भासना हम सबको मिले। तो एक तो मौन में रहना है, दूसरा तपस्या करनी है, और परिवर्तन भूमि में आए हो, बट्ठी में आए हो, तो बट्ठी माना जो बट्ठी में चीज पड़ती है वो बदल के जाती है, ऐसे नहीं कि जिस रूप से बट्ठी में कोई चीज पड़ी उसी रूप से बाहर आती है, बदल जाती है। देखते ना, आग में कोई भी चीज डालते हैं तो बदल जाती है, आग में पड़ते ही, कठोर से कठोर चीज भी आग में पड़ते गल जाती है, और नरम से नरम चीज स्ट्रांग बन जाती है, मजबूत बन जाती है, खाद वाली चीज से खाद निकल जाती है, काला कोयला राख बन जाता है। कितनी चीजों का मिसाल दे, जैसे ही वो भट्ठी में पड़ते हैं, आग में डालते हैं, उनका रूप रंग गुण सब बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम सब भट्ठी में आए हो, तो जो भी पुराने संस्कार स्वभाव विचार आदतें वो सब बदल कर जाए। वैसे तो आप कहेंगे कि हमने तो बाबा को सब दे दिया है, परंतु फिर भी वापस तो आ ही जाते हैं ना, भले कितना भी कहा बाबा को दे दिया है, पर ये स्वभाव संस्कार आते हैं, माया भी छोड़ती नहीं है। कई बार बाबा भिन्न भिन्न रूप से बताते हैं कि माया कैसे आती है, कभी माया नाक से पकड़ती है, कभी कान से पकड़ती है, कभी चोटी से पकड़ती है, कभी थप्पड़ मारती है, कभी ठोंसा मारती है, कभी गिरा देती है, कभी बेहोश कर देती है, और कभी तो ओम शांति खत्म कर देती है। तो माया का तो काम है आना, पर हमारा काम है सामना करना या उसको जीतना, न कि उसके वश होना, न डरना। पर यहाँ तो माया नहीं आएगी ना, वहां तो चलो शिकायत करेंगे क्या करें, माया बहुत आती है। अब यहाँ तो माया को दिल्ली में छोड़ा है या यहाँ ले आए, यहाँ तो नहीं लाए है, तो यहाँ तो माया वार नहीं करेगी। परंतु बाबा का साथ ऐसा अनुभव हम करें जो एक घड़ी भी बाबा की याद के बिना न रहे। वातावरण का साथ है, संग का साथ है, और दिन भर आपको जो मिलता रहेगा वो भी आपको साथ देता रहेगा, और इसके ऊपर वाइब्रेशंस कितने ऊंचे हैं। जहाँ ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, मम्मा ने तपस्या की, दादियों ने तपस्या की, और ऐसे तपस्वी स्थल पर आप तपस्या कर रहे हो। आप में से कई होंगे, भले पुराने भी होंगे, लेकिन जब से शांतिवन बना है तब से जब भी आते शांतिवन में आते हैं, लेकिन पांडव भवन में कभी नहीं रहे। तो जो पांडव भवन में कभी नहीं रहे वो हाथ उठाएं, देखो बहन कितने हैं पांडव भवन में कभी नहीं रहे। अच्छा, जो रहे हैं पांडव भवन में पहले वो हाथ उठाएं। अच्छा, तो 1/4 भी नहीं है, तो 3/4 तो पांडव भवन में कभी नहीं रहे। आप में से कोई है जिन्होंने साकार बाबा को देखा, वो हाथ उठाए। पुरानी किसी ने भी नहीं देखा। अच्छा, जिन्होंने दादी जी को देखा वो हाथ उठाए। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा दादी जी को भी वो हाथ उठाए। अच्छा, माना ये 2007 के बाद आए हैं। जो पहली बार आए हैं मधुबन में वो हाथ उठाए, नीचे आए वो नहीं, माना टोटल पहली बार आए हैं मधुबन में वो हाथ उठाए। अच्छा, थोड़े हैं। तो चाहे चलो कैसे भी हैं, पुराने भी बहुत होंगे, जो 20 साल से पुराने हैं वो हाथ उठाए, 20 साल से अधिक। अच्छा, 30 साल से अधिक। अच्छा, 30 साल से अधिक भी है। जो 5 साल के अंदर के हैं वे हाथ उठाएं, 5 साल के अंदर के। अच्छा, चलो, तो भले आप कितने भी पुराने हो या नए हो, चाहे पहली बार आए हो या पांडव भवन में पहली बार आए हो, ये अनुभव जो बठी का है वो तो आपने नहीं किया, क्योंकि आज तक पांडव भवन में तो इस प्रकार बठिया नहीं हुई है। वैसे शुरू में तो बहुत हुई, जैसे ही बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाप दादा ने यही सबसे पहले इशारा दिया कि अब मधुवन में बठिया रखो, क्योंकि पहले तो बाबा से मिलने आते थे, मम्मा से मिलते थे, बाबा मम्मा का ही प्यार लूटते थे, सुबह से रात तक बाबा के साथ ही खेलना, बाबा के साथ ही कई बार भोजन करना, बाबा के साथ ही झूले पर झूलना, बहुत कुछ सब बाबा के साथ, बाबा ही बहलाते थे। बाबा बहनों को तो मधुबन में रखते ही नहीं थे, बाबा कहते थे मैं बहनों का स्थान सेवा केंद्र है ये, तो इसलिए पांडव भवन नाम रखा। थोड़े से पांडव जो यहाँ कार्य करते थे उनको ही बाबा ने यहाँ रखा था। बहने तो टीचर्स है, वो तो ज्ञान देने वाली है, तो वो तो सेंटरों पर रहेंगी, यहाँ तो बाबा बैठे हैं, तो बाबा ही सबको बहलाते थे। लेकिन जैसे ही बाबा अव्यक्त हुए तो कैसे बाबा ने दादियों को सबको मधुबन में रखा। जब कराची से यहाँ आए तो धीरे धीरे सेवा केंद्र खुले, आप जानते हैं दिल्ली में सबसे पहला सेवा केंद्र खुला, तो धीरे धीरे बाबा ने सब बहनों को सेवा स्थानों पर भेजा। तो कैसे सेवा स्थानों पर जाती गई और मधुबन में केवल भाई रहते थे, तो चार बुजुर्ग बहनें रहती थी। लेकिन जैसे बाबा अव्यक्त हुए तो बाप दादा ने सारी मुख्य बहनों को मधुबन में रख दिया। बड़ी दादी जी, दीदी जी तो थे ही मम्मा के बाद, दादी जी भी मधुबन में नहीं रहते थे, बॉम्बे में रहते थे। तो कैसे बाबा ने दादी जी को रखा, फिर चंद्रमणि दादी को रखा, ये सब दादियों को मधुबन में रखा। और जैसे बठिया शुरू की तो पहले कुमारियों की, टीचर्स की, कुमारों की, युगलों की, ये सारी बठिया 70s में ये बहुत सारी हुई, बाबा ने उनको पक्का किया। और फिर तो ज्ञान सरोवर शांतिवन बना तो सब कुछ वहाँ होने लगा, और मधुबन तो बिल्कुल सूक्ष्म वतन जैसा था, जो यहाँ के रेजिडेंट्स थे वो तो है ही और आते रहे। लेकिन अभी 2-3 साल से यहाँ बठिया होनी शुरू हुई है, तो कुछ दूसरा ही अनुभव भाई बहने करते हैं यहाँ रह करके। लेकिन आप सब यहाँ आए हो तो अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक एक ही लक्ष्य रखना है। खास अमृत वेले का लक्ष्य तो बहुत ही ऊंचा है कि हमको ऐसी तपस्या करनी है जो एक बाबा दूसरा न कोई। बड़ी दीदी जी मधुबन में जब भी कोई आता था तो यही एक बात कहती थी कि रोज जैसे ही सवेरे उठते हो बाबा को गुड मॉर्निंग करते हो, गुड मॉर्निंग करने के बाद 5 केले खाओ, पता है ना, बड़ी दीदी ये कहा करती थी 5 केले खाओ, 5 केले खाएंगे सुबह सुबह तो सारे दिन में बहुत शक्ति मिलेगी। 5 केले कौन से? अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में अकेला होकर अकेले बाप को याद करना है। हो गए 5 केले? अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और जैसे अमृत वेले उठे, आंख खुली, बस एक बाबा और कोई देहधारी की याद न हो, क्योंकि अकेले आए, किसी को साथ नहीं लाए, अकेले आए अकेले ही जाना है। ये नहीं सोचना अंत में तो मच्छरों सदृश जाएंगे, हम तो हम सबके साथ जाएंगे, पर अकेले ही जाना है। वैसे भी गीत गाते ना वो, क्या ना हाथी होगा ना घोड़ा होगा, तुम्हें पैदल जाना है। खैर पैदल तो क्या जाएगी, आत्मा उड़ के ही जाएंगी, लेकिन हाथी घोड़ा नहीं मिलेगा, कोई पालकी नहीं मिलेगी, आत्मा को वापस अकेले जाना है। इस संसार में जो भी है सब यहीं रह जाना है। तो इसीलिए अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में उस समय तो बिल्कुल अकेले एकांत शांत। ये नहीं उस समय देखना फलाना उठा या नहीं उठा, दूसरा बेड वाला उठा या नहीं उठा, अरे उठा का पहले चला गया, मैं लेट हो गया, कुछ नहीं सोचना, बस उठे बाबा गुड मॉर्निंग, और किसी को नहीं देखना है। तो अकेले में अकेला होकर, मन से भी अकेला, अकेले को याद करना है तो पहले 2-5 मिनट बेड पर जरूर बैठना है। ऐसे नहीं हो रही देर हो गई जल्दी जल्दी उठो, नहीं, एकदम शांत चित होके उठे और फिर जल्दी तैयार होकर के हॉल में आते हैं। और हॉल में भी यही बुद्धि में रखें कि बस अब हमारी बाबा के साथ अपॉइंटमेंट है, हम योगी आत्माएं हैं। जिस समय भोगी सोते हैं योगी जागते हैं, भोगियों के लिए तो वो रात है, देर से सोते हैं तो देर से उठते हैं, पर हम योगियों के लिए वो प्रभात है, अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है। तो जब भोगी सोते हैं तो योगी जागते हैं। सचमुच दुनिया में लोग तो 3 बजे तो के बाद तो सोते हैं। आप विदेशों में जाए, हमने कई जगह अनुभव किया, सारी रात गाड़ियां चलती रहती, पता नहीं कहाँ जाते होंगे, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी, और हम उठते हैं तो उस समय शांत हो जाता है सब, तब सोने जाते हैं। तो हमारे लिए तो प्रभात है और भोगियों के लिए रात है। तो उस समय जब सब भोगी सो रहे हैं तो उस समय योगी जाग करके उस योगेश्वर बाप के साथ मिलन मनाते हैं। और इस मिलन में क्या अनुभव करना है, बाप के साथ सर्व संबंध अनुभव करने हैं। कैसे बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु, हाँ उस रूप में अनुभव करो। पहले तो पिता की गोद में बैठ जाओ, मात पिता की गोद, कितनी प्यारी गोद है, जिस गोद में बच्चे को कोई फिक्र नहीं, बस माँ की गोद में बैठ गया, सब फिक्रों से फारिग हो गया, सब चिंताओं से मुक्त हो गया। तो मैं आत्मा भी बाप दादा मात पिता की गोद में बैठ गई और उस गोद में बैठ करके बाबा का प्यार प्राप्त करो। बाबा उस समय प्यार की वर्षा करते हैं, सारी शक्तियां बच्चों में भरते हैं। अगर थोड़ी नींद का थोड़ा आपको आए भी ना, तो उस समय फिर भले उठ करके थोड़ा सैर करो, टहलो, ये ना हो कि बैठे बैठे झुटके खाते रहे, लेकिन बैठो तो बिल्कुल ऐसे तपस्वी होकर के बैठो जिसमें और किसी की भी याद न हो। नींद का वातावरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जल्दी सवेर शाम रात को 10 बजे के अंदर सो जाओ, 10 बजे सब समाप्त हो जाता है, सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और बात तो करनी नहीं है, मौन में रहना है। तो वैसे भी संकल्पों से भी परे रहेंगे तो जाकर पहले रात को बाबा की गोद में सो जाओ, सब फिक्रों से फारिग रात को ही हो जाओ, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अकाउंट्स में तो कैरी फॉरवर्ड करते ना नेक्स्ट डे के लिए, लेकिन यहाँ जो भी खाते हैं, जो कुछ भी हिसाब किताब, सब कुछ रात को स्वाहा संपन्न हुआ और सवेरे एकदम नया जीवन ये अनुभव करना है। तो रात को ही सब बाबा को दे करके सोएंगे तो सवेरे उसी संकल्प से उठेंगे। और जैसे ही आप क्लास में आएंगे तो क्लास में आकर के आप अनुभव करें कि बाबा हमारे साथ हैं, हम बाबा की छत्र छाया में हैं, बाबा से शक्ति की किरणें प्राप्त कर रहे हैं। भले सामने कोई भी हो लेकिन हम बाबा से शक्ति की किरणें प्राप्त कर रहे हैं, बाबा की लगन में हम मग्न हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, उनकी याद से मेरे सारे पाप दग्ध हो रहे हैं, मैं आत्मा इतनी शुद्ध हो रही हूँ, क्योंकि अनेक जन्मों के पाप तो है न सिर पर, बोझ बहुत है सिर पर, 63 जन्मों का बोझ है सिर पर, और अंदर ही अंदर बाबा से इतनी मीठी मीठी बातें करो, प्यार की बातें करो, दिल की बातें करो, समस्याएं मत सुनाओ बाबा को, शिकायतें मत करो बाबा को, उलहने मत दो बाबा को, ये सब जरूरत नहीं है बाबा को उस समय देने की, न बाबा से कुछ मांगो, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, न शिकायत करना है, न मांगना है, न उलहना देना है, कुछ भी नहीं, बस प्यार की बातें। बाबा कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है, और मैं आत्मा भी उसकी कितनी श्रेष्ठ हूँ, कितनी ऊंची हूँ, तो अपने प्रति भी वो स्वमान जागृत हो, और बाबा से प्यार तब बढ़ता जाएगा जब बाबा के गुणों का गान करते 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 उसी में खो जाओ, जिसको ही बाबा कहते लगन में मग्न होना, तो सवेरे लगन में मग्न होने की ऐसी स्थिति बन जाए जो एक बाप के सिवा और कोई बुद्धि में याद ना आए। अगर कुछ और बुद्धि में याद आता है, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो, ब्रेक लगा दो, ब्रेक बहुत जरूरी है लगाना, और कोई संकल्प अगर आए ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो समय श्वास संकल्प शक्ति फिर व्यर्थ जा सकता है, और अमृत वेले का समय तो है ही, वरदानों से भरपूर होने का समय, और फिर एकदम शांत हो जाए तो कैसे बाबा के वरदान से हम झोली भर सकेंगे, इतनी सुंदर टचिंग्स होगी आपको, जिन टचिंग्स के आधार से आप वो शक्ति का अनुभव कर सकेंगे, और ऐसे लगन में मगन हो जाओ जैसे कि दुनिया तो मरी पड़ी है, दुनिया सारी भस्मीभूत हुई पड़ी है, और संसार में मेरा कोई नहीं, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक वकील हूँ, या न जाने क्या क्या दुनिया के अभिमान होते हैं, क्या क्या लोगों को अपनी अपनी विशेषताओं का नशा होता है, वो सारे नशे खत्म, बस मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, बस इतना छोटा बच्चा बन जाए, इतना इनोसेंट बन जाए जो और कोई भी बुद्धि में न हो, बस माँ की गोद में बाबा की गोद में हूँ, और उसी गोद में बैठ करके बाबा से प्यार की बातें, दिल की बातें, उलहने नहीं, शिकायतें नहीं, कंप्लेंट्स कुछ नहीं, कुछ मांगना नहीं, ये जरूर याद रखें। कोई अगर आपने कोई पुरानी बातें हैं भूले की है कुछ भी, उस समय याद नहीं करो, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समय तो बाबा से प्यार लूटने का समय है, वो समय तो बाबा से वरदान लेने का समय है, वो समय तो बाबा से शक्ति भरने का समय है। अगर पुरानी बातें कोई भूले, कोई ऐसी बातें वो अगर याद करेंगे तो हो सकता है मन उदास हो जाए, मायूस हो जाए, दिल शिकस्त हो जाए, फिर बाबा से शक्ति मांगना शुरू कर दे, क्योंकि दिल शिकस्त हो गए, उदास हो गए, बाबा हमें शक्ति दो, तो मांगने कुछ शक्ति भी मांगनी नहीं है, कोई वस्तु तो मांगना नहीं है, पर शक्ति दो ये भी मांगना नहीं है, भक्ति में तो बहुत मांगा ना, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, तो मन का विश्वास कमजोर हो सकता है तो इसलिए डगमग होते हैं, तब भगवान को कहते हैं, पर यहाँ तो सब निश्चय बुद्धि बैठे हैं, कोई संशय बुद्धि नहीं बैठा है जो मन का विश्वास कमजोर होगा और भगवान से शक्ति मांगे, तो हम है ही शक्तिशाली आत्मा, और ऐसी शक्तिशाली आत्मा उस सर्वशक्तिवान के सानिध्य में है, उनकी छत्र छाया के अंदर है और वो शक्ति जैसे मुझे बाबा दे रहे हैं, मैं भरपूर हो रही हूँ, बाबा की शक्ति की किरणें मुझे मिल रही है और मैं अपने अंदर भरती जा रही हूँ, भरपूर होती जा रही हूँ, शक्ति के सागर में लहरा रही हूँ। ये अलग अलग चिंतन मन में आप कर सकते हैं, या तो बिल्कुल निर्संकल्प होकर के गोद में समा जाएं। ऐसे भी नहीं कि शून्य हो जाएं, शून्यता हमारा लक्ष्य नहीं है। कई बार नींद का झटका आता है तो लगता है कि मैं तो एकदम शांत हो गया, वो शांत नहीं है, वो शून्यता नींद का झोंका है। लेकिन शांत होना और शून्य होना दोनों में बड़ा अंतर है। शांति एक शक्ति है, उस शांति की शक्ति से भरपूर होना ये अलग बात है, और शून्य हो जाना जैसे कि कुछ है ही नहीं, डेड, बाबा उसको कहते डेड साइलेंस में चले जाएं, तो एकदम डेड साइलेंस भी ना हो, संकल्पों से इतने भरपूर हो जाओ, उस भरपूरता की अनुभूति जिसको बाबा कहते डीप साइलेंस। तो एक है डेड साइलेंस, वो शून्यता की स्थिति है, दूसरा है डीप साइलेंस। तो डीप साइलेंस का मतलब है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा गई, हो गई, विलीन हो गई, समा गई। इसी कोई भक्तों ने क्या कह दिया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो ब्रह्म में कोई लीन होने की बात नहीं है, लेकिन मन से कैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु उस परम ज्योति में समा गई, और समा गई माना समान बन गई, वो समानता की स्थिति, वो समाने की स्थिति, वो संपन्नता की स्थिति, ये अमृत वेले बहुत सहज अनुभव कर सकते हैं। और वो शक्ति अगर हमने सुबह पाली तो फिर दिन भर कितना अच्छा बीतेगा। तो वातावरण का भी साथ है, संघ का भी साथ है, भोजन का भी साथ है, अन्न का भी साथ है, तो ये सारा जो साथ यहाँ मिलेगा और बाबा का प्यार, ये जो आप यहाँ अनुभव करेंगे, चार धामों की यात्रा करेंगे, बाबा के कमरे में जाएंगे, वहाँ बाबा का अलग रूप से प्यार लूटेंगे, फिर बाबा की झोपड़ी में जाएंगे तो बाबा को सखा रूप में झोपड़ी में देखें और एक वन टू वन कॉन्वर्सेशन अनुभव करें, जो दिल की बातें हैं वो बाबा से करना बाबा की झोपड़ी में। हाँ, फिर शांति स्तंभ पर जाएं तो ऐसे अनुभव करें जैसे कि मैं आत्मा एकदम अशरीरी बन गई, सब हड्डियां स्वाहा कर दी। बाबा के हिस्ट्री हॉल में जाएं तो ऐसे अनुभव करें जैसे बाबा टीचर बन के हमको पढ़ा रहा है, वही मुरली चला रहा है, और जो बाबा मुरली में वरदान दे रहा है वो मैं अपने अंदर धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर ओम शांति भवन में आप आए मुरली सुनने के लिए तो स्टूडेंट बन करके नोट भी करें, क्योंकि दिन भर आपको उसका फिर मनन चिंतन करना है। फिर आपको जो समय मिले उस समय में आप अपने ही धुन में रहें। मोबाइल सबके स्विच ऑफ है ना, आज ही रात को घर में सब बता दो कि मैं आराम से पहुंच गया, पहुंच गई, अब मुझे तीन दिन कोई डिस्टर्ब ना करे। ये हो सकता है कि घर से फोन आएंगे, मम्मी कहाँ हो, बच्चे फोन करेंगे, डैडी कहाँ हो, या माता पिता फोन करेंगे, ठीक पहुंची, तो सबको बता दो, क्योंकि आजकल जमाना भी तो ठीक नहीं है ना, बच्चे गए घर से, कहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे पता नहीं, तो इसलिए इन्फॉर्म कर दो और कहो हम तो अभी स्वर्ग में पहुंच गए। इसीलिए स्वर्ग का सुख हमारा कम नहीं करना फोन करके, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम करेंगे, पर आप नहीं करना, और बहुत जरूरी हो तो भले करना, पर हम तो स्विच ऑफ ही कर रहे हैं। तो इसीलिए तीन दिन, कल परसों तरसों, ये तीन दिन बिल्कुल ही एक दूसरी दुनिया में आपको रहना है और ऐसी छाप लगाकर जाना जो आप महसूस करेंगे कि अमिट बन जाए। एक दिन आपको बाबा को पत्र भी लिखाएंगे कहेंगे, है ना, पत्र लिखने का, तो पत्र भी बाबा को लिखना। पत्र बाबा को क्या लिखेंगे, बाबा को पत्र में अवश्य आपके जो भी दिल की बातें वो लिखना। कई पूछते हैं कि कौन पत्र पढ़ेगा, तो हम कहते कोई नहीं पढ़ता है, वो जिस समय आप लिखते हो ना उस समय बाबा पढ़ लेता है बस, और कोई नहीं पढ़ता है। और जिस समय आप सोचते हो तभी बाबा तक पहुंच जाता है। इसीलिए पर लिखने से क्या होता है, एक थप्पा लग जाता है अंदर में, हम सचेत हो जाते हैं कि हमने बाबा को लिखा है, तो एक दृढ़ संकल्प हो जाता है और उसी अनुसार आप लिख करके बाबा के लेटर बॉक्स, जिस बाबा के कमरे के बाहर है, झोपड़ी के बाहर है, झोपड़ी के अंदर है, वहां उसमें डाल दो। कोई नहीं पढ़ता है, तो कई पूछते हैं फिर वो कहाँ जाता है, वो हम कहते हैं वो आप चिंता नहीं करो, वो तो कहीं भी करेंगे, हो सकता है उसको अग्नि संस्कार भी कर दें। अग्नि संस्कार ही करना होता है ना, कोई पढ़ेगा थोड़ी। तो इसीलिए लेटर आप बाबा को जो कुछ दिल की बातें हैं, जो कुछ भी है, आपकी समस्याएं भी है, कुछ भी है, वो भी बाबा को दे दो, बोझ बाबा को दे दो। ये मत लिखो बाबा मैं क्या करूं ये है बात, बाबा ये बोझ आप संभालो, बस बाबा को बोझ दे दो और खुद निश्चिंत हो जाओ बाबा को पत्र लिख करके। और जैसे ही आप निश्चिंत हो जाएंगे आपको लगेगा मैं इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया। तो इसीलिए यहाँ ही हमें ऐसा संपन्न बन के जाना है, इतना बदल के जाना है और इतना ऊंचा लक्ष्य रखना है कि यहाँ से हम फरिश्ते बन जाएं। फरिश्ते, ब्राह्मण तो है ही, पर ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, फरिश्ता सो बिंदु स्वरूप बनना है, बिंदु स्वरूप सो देवता स्वरूप बनना है। ये पांच जो स्वरूपों की याद है वो भी आप बीच बीच में जरूर करना। तो कैसे, हम अभी तो ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण सो फरिश्ता सो बिंदु रूप सो देवता स्वरूप सो पूज्य स्वरूप हम कैसे बनते। स्वदर्शन चक्र भी घुमाना बीच बीच में समय मिले तो, बाबा कहते उससे विकारों के भी गले कट जाएंगे, क्योंकि ये पांचों ही स्वरूप बड़े पॉजिटिव स्वरूप है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। चाहे देवता स्वरूप में इतनी पॉजिटिविटी है, चाहे पूज्य स्वरूप में इतनी पॉजिटिविटी है, ब्राह्मण स्वरूप की कितनी पॉजिटिविटी है, फरिश्ता स्वरूप में और बिंदु स्वरूप में तो है ही। तो ये पांचों ही स्वरूप मेरे कितने श्रेष्ठ स्वरूप हैं और इन पांचों ही स्वरूपों से मैं आत्मा विचरण करती हूँ, ये स्वदर्शन चक्र है जिससे सारे बुराइयों के, कुरीतियों के, विकारों के, विकृतियों के गले कट जाएंगे और मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण होकर के उड़ूंगी। इतना हल्का हो जाओ और फिर यही शक्ति आप वापस जब घर जाएंगे तो ये सबको देना, सब अनुभव करे, अरे ये बट्टी क्या करके आए मधुबन से, ये तो फरिश्ता बन करके आए, ऐसा अनुभव कराएंगे घर वालों को भी जब वापस आप जाएं। ये न हो कि जैसे थे वैसे ही वापस गए तो घर वाले भी कहेंगे कि बट्टी करके क्या लाभ हुआ, क्या पाया। तो कुछ पागना है, कुछ छोड़ना है, कुछ भरना है, ये सब इन तीन दिनों में करना है ताकि एकदम परिवर्तित होकर के जाए। मंजूर है, मंजूर है ना, मंजूर है कि नहीं, ठीक है हाथ उठाओ उसके लिए मंजूर है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। और ये भी सोचो कि हमको हर एक एक घड़ी सफल करनी है, एक घड़ी भी हमारी वेस्ट न जाए, एक श्वास भी हमारा व्यर्थ न जाए, एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए। तो समय, श्वास, संकल्प, जो आत्मिक शक्ति है वो भी वेस्ट न जाए। क्योंकि समय श्वास संकल्प अगर सफल हुआ तो शक्ति तो सफल होगी। इसीलिए व्यर्थ कुछ न जाए, कोई ऐसा शब्द भी मुख से न निकले जो किसी को दुख पहुंचे। वैसे तो बोलना ही नहीं है, पर समझो जरूरी भी हुआ बोलना तो जहां 10 शब्द बोलते हैं उसको 2 शब्दों में समाप्त कर दो। और ये बैच तो लगाई हुआ है, वो तो सारा दिन पहन के घूमना, इसके बिना तो बिल्कुल चलना ही नहीं। अमृत वेले से ही पहन के आ जाना, तो जैसे गले में फांसी है फांसी होती है ना गले में, वो डालते हैं, तो ये फांसी को जो बाबा कहते लटके रहो एक बाबा की याद में, तो ये गले में माला कहो, फांसी कहो, जो कुछ भी कहो है एक की लगन में मगन होने के लिए। ये ऐसे नहीं है कि आपने लगाया और फिर बातें करने लगे। हाँ, मैं एक हंसी की बात सुनाती हूँ। कई बार हमारे पास विदेशी भाई बहने आते हैं ना, तो उनको आता है कि मैं मधुबन में मौन में रहूंगा, तो साइलेंस का बैज लगाते। तो मैंने एक भाई को देखा साइलेंस का बैज लगा हुआ है, साइलेंस का बैज लगाकर घूमते हैं, पर खूब बातें कर रहा है बैज लगा हुआ है साइलेंस का। तो मैंने उससे कहा भाई जी आपने साइलेंस का बैज लगाया पर आप तो कितनी बातें कर रहे हो। तो मेरे को क्या कहता है बहन जी ये मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, दूसरे देख रहे हैं ना, मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता चल रहा है क्या है, ये दूसरे मेरे से क्यों बात करते हैं, वो बात ना करे ना, क्योंकि मुझे साइलेंस में रहना है, तो वो बात करते हैं तो मैं भी करता हूँ, तो दोष किसको दे दिया, दूसरों को। तो ऐसे नहीं बैज लगाया खुद और दोष दे रहे हैं दूसरों को। पर जैसे बैज लगाना या गले में ये फंदा डालना या माला डालना, ये एक विजय की माला भी है। तो विजय की माला जैसे आपके गले में पड़ी है तो ये भूलेगी नहीं कि मैं विजयी रतन हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ऊंचे से ऊंची आत्मा हूँ, ये भी एक लगन में मगन होने की स्थिति है। तो सुबह से लेकर के रात्रि तक आप यही अनुभव करना, और कैसे उड़ते रहेंगे आप ये 3 दिन पूरा ही अनुभव करेंगे, और लास्ट दिन फिर अपना अनुभव भी आप सुनाना, क्योंकि अनुभव सुनाना भी बहुत जरूरी है। भले आपस में ही सुनाना या ही सुनाना, आखिरी दिन आपका आपके लिए अनुभव की लेन देन भी होगी, तो अवश्य ये भी एक आपकी परीक्षा होगी कि कौन सचमुच 3 दिन बिल्कुल नहीं बोला। उसको इनाम देना चाहिए सच्ची, क्योंकि हम देखते हैं भले कितना भी हाथ उठाते हैं संकल्प करते हैं लेकिन कहीं न कहीं चुप जाते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन जो सचमुच संकल्प करते हैं ना बहुत दृढ़ करते हैं, बाबा कहते दृढ़ता हो, अंडरलाइन हो दृढ़ता की, तो फिर वो विजयी जरूर बनते हैं। तो अगर यहाँ विजयी बन सकते हो तो बाहर जाकर भी विजयी बन सकते हो, उसमें कोई दो मत नहीं होगी, लेकिन यहाँ विजयी बन के दिखाओ, बिल्कुल न्यारे प्यारे और तपस्या कर रहे हैं, भट्ठे में पके हुए, आग ही आग है चारों तरफ, बस और कुछ सामने नहीं है, बस एक बाबा दूसरा न कोई, कोई देहधारी की याद आए तुरंत अपने आप को रोको, कोई आत्मा की याद नहीं चाहिए मुझे, कोई देहधारी का आकर्षण नहीं चाहिए मुझे, अगर किसी को देखो भी तो बस चमकती हुई आत्मा मणि हरे के मस्तक में चमक रही है बस। तो दृष्टि भी पवित्र हो जाएगी, स्मृति भी पवित्र हो जाएगी और स्थिति तो ऊंची बनी जाएगी, ठीक है। बाकी तो आपको बहुत कुछ डायरेक्शंस मिलेंगे जो सुबह से लेकर के रात्रि तक आपको पालन करने हैं, क्योंकि भट्ठी में आए हो तो भट्ठी में पकना है बस, यही बुद्धि में रखना है। इसलिए और छोटी छोटी बातें बहुत है, कौन सुनाएगा, वो आएगी ना। तो अभी आपके सामने तृप्ति बहन आ रही है, क्योंकि इसके बाद फिर शशि बहन जी आएंगे और शशि बहन भी आप सबसे मिलेंगे और फिर आप सबको टोली भी खिलाएंगे। तो पहले कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं, डायरेक्शंस हैं सारी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक पानी की तो बहुत शॉर्टेज है, बारिश तो पड़ी नहीं है, तो वो भी सारी सूचनाएं आपको देंगी, कैसे ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब बातें आपको तृप्ति बहन अब सुनाएंगे। ठीक है, समझ गए ना, लक्ष्य का भी पता चल गया और अमृत वेले क्या करना है वो भी पता चल गया, बस सब इसको अमल में लाना है। और जो मन में संकल्प आए उसको नोट करो, अपने साथ नोटबुक पेन हर वक्त साथ रखो, अगर बहुत जरूरी किससे बात भी करनी है तो भले उसको लिख के दो, परंतु आवाज में नहीं आना। और तो आवाज में आएंगे जो यहाँ रहते हैं वो तो आएंगे, उनकी तो भट्टी नहीं है, लेकिन वो जब आपको देखे तो वो भी शांत हो जाए, ऐसा अनुभव आप उनको भी कराओ, क्योंकि वो तो आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन आप अगर एक लक्ष्य रखेंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। पर आपका संकल्प दृढ़ हो तो देखो सफलता तो हमारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हो नहीं सकता कि सफलता न मिले, हम विजयी न बने, ये हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी भट्टी बहुत सफल रहे, एक अमिट छाप लगे, आप जीवन में इतना परिवर्तन करके जाओ, जो जहां भी जाओ, जब भी जाओ, किससे भी मिलो, आपके अंदर वो परिवर्तन देख करके उनको भी प्रेरणा मिले, चाहे वो अज्ञानी भी क्यों ना हो, उनको भी प्रेरणा मिले कि हम भी वहां जाएं, हम भी कुछ अनुभव करें। क्योंकि आज का सचमुच हम देखते हैं हर आत्मा शांति की बहुत प्यासी है, बहुत प्यासी है, बहुत उनको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, जो आत्माओं में नहीं है। और आप इतना भरपूर होकर के जाएं जो यही फिर सबको बांटें, तो कितनों की आशीर्वाद मिलेगी, बाबा की तो के तो वरदान मिलेंगे, लेकिन उनकी भी दुआएं मिलेगी, बड़ों की आशीर्वाद मिलेगी, तो कितने भरपूर हो जाएंगे। इतना भरपूर होकर के अपना जीवन ऐसा सुंदर श्रेष्ठ बनाना है, यही हमारे जीवन का भी लक्ष्य हो। जो कभी भी बाबा बुलाए आत्मा तैयार है ना, तैयार है ना आत्मा, कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। हाँ, कई पूछते हैं कि कब विनाश होगा, तो बाबा कहते हैं क्यों पूछते हो, क्या संपूर्ण बने हो? पूछना माना कि मैं तैयार हूँ, माना संपूर्ण बन गया हूँ। तो संपूर्ण बने नहीं है तो पूछते क्यों, पहले संपन्न तो बनो, संपूर्ण तो बनो, वो अपने आप होगा। सोल कॉन्शियस तो बनो, गॉड कॉन्शियस तो बनो, डेट कॉन्शियस मत बनो, वो अपने समय पर होगा। पर हम एवर रेडी रहे, क्योंकि अचानक होगा और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो ये अभ्यास बाबा हमारा डलवा रहे हैं, ताकि जो भी घड़ी अंत की घड़ी हो, मानो हम पास विद ऑनर होकर के बाबा के घर जाएं, यहां से लंगर उठा हुआ हो, तभी तो पार जाएंगे, तभी तो उड़ सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इस मौके का पूरा पूरा लाभ ले उठाना है, ताकि इतनी शक्ति भर के जाएं, जो कोई भी विघ्न सामने आए वो विघ्न न ठहरे, वो भाग जाए और आप विजयी बन के रहो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। ठीक है, अभी हम 3 मिनट पहले योग में बैठेंगे।
बहुत ही सरल भाषा में आदरणीय शिलू दीदी ने हम सभी को अमृत वेला क्या महत्व, क्या प्राप्ति और कैसे करना है वो सुनाया, और 3 दिन का इतना सुंदर लक्ष्य दे दिया है। मुझे तो लगता है कि कोई भी भाई बहने 1 मिनट भी अपनी जाने नहीं देंगे। तो दीदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, आगे भी लाभ लेते रहेंगे क्योंकि दीदी यहाँ ही रहते हैं पांडव भवन में ही। अच्छा, अभी पहले हम सभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, नैन में प्रेम के मोती जी साथ लाती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।